यह भक्त की कामना है। इसीलिए ज्ञानी के सामने तो पीताम्बर को रख देते हैं, उतार देते हैं। राम देखि मुनि आवत हरषि दंडवत कीन, स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कह दीन। जब ये सनत कुमार आदि आए अयोध्या में, प्रभु ने बाग में अगवानी की, तो वहां पर स्वागत इत्यादि पूछ करके प्रणाम करके अपना पीत पट उतार करके दे देते हैं बैठने के लिए। संकेत है मानो पीताम्बर निकाल दिया, ज्ञानी के सामने पीताम्बर में निकाल देते हैं, माया का आवरण हटा लेते हैं। पर भक्त माया के आवरण को हटवाना नहीं चाहता, वह चाहता है माया को, वह चाहता है संसार को, पर यह भी नहीं चाहता कि यह आवरण इतना मोटा हो जाए कि भगवान का दिखना ही बंद हो जाए। वह आवरण के बीच से भगवान के सौंदर्य को देखना चाहता है, ईश्वर सतत दिखते रहें, यह उसकी कामना है। तो यही तो सर्वानी कर्माणि मत परह, यह जो कहा अनन्य योग, तो इसके माध्यम से यही बातें कही गई कि वह अनन्य योग के द्वारा, माने ईश्वर रहे तो सब कुछ का अर्थ है और ईश्वर नहीं है तो किसी का अर्थ नहीं है, यह इसका तात्पर्य है। वह ईश्वर को ही केंद्र बना करके चलता है। तो इसलिए कहा कि भक्त कैसा है, सब कर्मों का संन्यास मुझमें करता है, मेरे परायण है और अनन्य योग के द्वारा मेरा ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है। ऐसे जो भक्त हैं तेषाम अहम समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थो मय्यावेशित चेतसाम। जिनका मन मुझमें आविष्ट हो गया, जिनका चित्त इस प्रकार से मुझमें लग गया, ऐसे लोगों के लिए मैं स्वयं आ जाता हूं तुरंत मृत्यु संसार सागर को पार करने के लिए। यह भगवान का क्या कहना चाहिए, यह वचन है, उनकी यह प्रतिज्ञा है कि भगवान स्वयं आते हैं। ऐसे जिन लोगों ने अपने चित्त को उनमें लगा दिया, इसलिए अर्जुन तू क्या कर। अर्जुन ने पूछा था कि भक्ति योग का जानकार और ज्ञान योग का जानकार, इन दोनों योगों के जानकार में योग वित्तम कौन है, ये जो योग वित्त हैं दो प्रकार के, इनमें योग वित्तम कौन है, श्रेष्ठ जानकार कौन है योग का। तो भगवान ने बिल्कुल भिन्न ढंग से उत्तर दिया है और कहते हैं अर्जुन तेरे लिए तो कहूंगा, मैये व मन आधत स्व मई बुद्धिम निवेशय निवशिष्य से मैये व अत ऊर्ध्वम न संशया। कि अर्जुन तू तो यह कर, मैये व मन आधत स्व, मन मुझ में रख दे, आधत स्व आधार माने भगवान में हम मन को रख दे, मई बुद्धिम निवेशया और मुझ में ही तू अपनी बुद्धि को भी रख दे, निविष्ट कर दे। ऐसा जब तू करेगा तो तू निवशिष्य से मैये व, तू मुझ में ही घुस जाएगा, मुझ में ही प्रविष्ट हो जाएगा। अत ऊर्ध्वम तुरंत उसके बाद न संशय, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं भक्त से कि तू अपना मन भी मुझ में डाल और बुद्धि भी मुझ में डाल। तो यह जो मई एव, यह जो एव शब्द है माने जोर देने के लिए यहां पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कहते हैं बुद्धि भी डालो, बुद्धि माने संकल्प विकल्प करने वाली, मन भी डालो, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है। तो कहते हैं मन और बुद्धि दोनों को, कभी कभी हम मन को तो डालते हैं भगवान में, मन लगाते हैं पर बुद्धि को नहीं लगा पाते। बुद्धि मानो भिन्न भिन्न प्रकार का विचार करती रहती है, हमारी बुद्धि नहीं लगी रहती, बुद्धि में धारणा नहीं होती है। आप देखेंगे बुद्धि से धारणा होती है, जब तक मन और बुद्धि, बुद्धि धारणा करे माने जो हम सोच रहे हैं, मन में तो ऐसा लगता है हम ऐसा कर लें, पर बुद्धि ने अगर भिन्न निर्णय ले लिया तो मन का सोचा हुआ व्यर्थ जाता है। मन में तो कई बातें आती हैं, एक हमने गरीब को देखा, मन ने कहा भाई इसकी सहायता करनी चाहिए, और बुद्धि ने कहा कहां तक सहायता करोगे, दुनिया में कितने लोग हैं, किनकी किनकी तुम सहायता करोगे। अब बुद्धि ने इस प्रकार का विचार दे दिया तो मन में जो भावना भी उठी थी वह भावना उसके कारण दब जाती है, माने बुद्धि ही प्रबल हो जाती है। तो यहां पर यह कहा गया कि तुम मन को भी डालो और बुद्धि को भी मुझमें निविष्ट करो। तो बुद्धि का भी केंद्र भगवान हो और मन का भी केंद्र भगवान हो, संकल्प और विकल्प ये जो मन में उठते हैं तो हम ईश्वर को ही संकल्प विकल्प का केंद्र बना ले। होता है हमारे मन में संकल्प और विकल्प होते हैं, तो जैसे यह होना चाहिए मन ने कहा, फिर उसे में विकल्प उठा, कैसे करके होगा, इसमें तो कई प्रकार की बाधाएं हैं, ऐसा लगता है। तो यह जो उल्टा विचार चलता है संकल्प का, उसको कहते हैं विकल्प। कि मन में एक संकल्प उठा, किसी कार्य के लिए संकल्प उठा, फिर मन में ही उसका उल्टा विचार उठता है, उसको हम कहते हैं विकल्प। तो तो इसको भी कहते हैं मन को तुम डालो, रखो। कहां रखो? आधत्स्व मई एव, मुझ में तुम अपने मन को रख दो। यह मन तो संकल्प विकल्प करने वाला है, कहां कहां भागने वाला है। तो भगवान कहते हैं मैं इसका भार लेता हूं, तुम रखो तो सही, अपने मन को और कहां रखोगे? कोई ऐसी तो तिजोरी नहीं है जहां पर हम मन को रख सकें। सभी तिजोरी में आप रख करके देखिए, मन सब जगह से भाग जाता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम एक बार मुझ में तो रख के देखो, मैं इसकी बहुत हिफाजत करूंगा। तुम रखते नहीं हो, मैं तुम्हारे मन को और कहीं भागने नहीं दूंगा। एक बार तुम निश्चय करो और निश्चय करके इस मन को मेरे पास ला करके छोड़ दो, मैं इसकी ठीक ठीक देखभाल करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओगे। जैसे अगर कोई बहुत विश्वासु नौकर है, हम अपने बच्चे को उसके पास छोड़ करके चले जाते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि नौकर उसे संभाल लेगा, तो ठीक। इसी प्रकार यहां पर भगवान कोई नौकर नहीं है, परंतु हम यह कहेंगे कि अगर मन को संभालने वाला कोई व्यक्ति है जो सच्ची सच्ची संभालेगा, वे हैं हमारे प्रियतम, वे ईश्वर, वे भगवान। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन को संभालने के लिए तैयार हूं, पर तुम तो रखो, मन को ला करके तुम मुझे दो। तुम जब तक नहीं दोगे तब तक मैं संभालूंगा कैसे? तो यह मन को रखने की साधना, कैसे हम रखें मन को भगवान के पास? वही ठीक है, संसार के कर्म जितने हम करते हैं उसमें कोई बाधा नहीं, पर भगवान को हम केंद्र बना लें, हमारे मन में संकल्प उठा, कोई बाधा नहीं। यह मान करके चलें कि प्रभु तुम ही मुझे इसकी प्रेरणा दे रहे हो, इस क्रिया के पीछे तुम्हारी ही प्रेरणा है, और यह जो क्रिया संपन्न होती है उसके कर्ता भी तुम ही हो। मैं यंत्र हूं, इस यंत्र के माध्यम से तुम कराते हो, यह यंत्र तुम्हारी मर्जी से चलता है। ऐसा भाव जब हम बारंबार मन में उठाने की चेष्टा करते हैं तो आप देखेंगे मन हमारा जाता है, मन को हम रख पाते हैं, यह संभव होता है। जैसे उदाहरण, अभी एक युवती एक बच्चे को जन्म देती है, पहला बच्चा है, पर ऑफिस में नौकरी भी करती है, कितने दिन छुट्टी लेकर के बैठेगी? नहीं बैठ पाती। अब इसके बाद ऑफिस जाती है, बॉस डिक्टेशन देते हैं, डिक्टेशन लेती है, टाइप करती है, काम करती है, परंतु अब क्या होता है, अब तो मन उसका बच्चे के पास पड़ा हुआ है। बार बार जहां थोड़ी सी फुर्सत मिली कि उसका मन बच्चे के पास चला जाता है, मानो मन का एक भाग उसके बच्चे के पास हरदम पड़ा हुआ है। काम कर रही है उस समय मन बच्चे के पास है कि नहीं है? पर अभी उसने काम में मन लगाया है, काम कर रही है, थोड़ी भी फुर्सत मिली कि मन एकदम से कूद करके भगवान बच्चे के पास चला गया। ये हम देखते हैं, संसार में देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अभ्यास के द्वारा यह संभव है कि हम ईश्वर में अपने मन को रख दें, और दुनिया के काम तो होंगे पर जो ही काम से थोड़ा सा अवकाश मिलेगा हमारा मन कूद करके भगवान के पास चले जाएगा। तो इसको कहते हैं मन का रखना और बुद्धि का रखना। बुद्धि माने यह जो हम विचार करते हैं, विचार के केंद्र भी वे ही, हम जो धारणा करते हैं धारणा के केंद्र भी वे ही, संकल्प और विकल्प भी वे ही केंद्र। हम बुद्धि से जो विचार करते हैं, मानो हमने कहा कि यह मेरा विचार नहीं, प्रभु तुम ही यह विचार मुझ में लाते हो, तुम ही ऐसी मेरी धारणा बनाते हो, यह विचार जो मेरी बुद्धि में खेल रहा है तुम्हारी कृपा से, ऐसा भाव। तो ऐसा करने से क्या होगा? वे कहते हैं कि ठीक है, निवशिष्यसि मय्येव, तू मुझ में ही, अत ऊर्ध्वम, जहां तूने मन और बुद्धि को मुझ में रखा, मय्येव अत ऊर्ध्वम, उसके तुरंत बाद। अत ऊर्ध्वम का कुछ लोगों ने मतलब किया कि इस जन्म से या इस शरीर से छुट्टी मिलने के बाद, माने मरने के बाद। तो मरने के बाद किसने देखा है? गीता में यह ही बतायी तत्सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना। अरे अध्यात्म का फल यही मिलेगा, जीते जी मिलेगा, मरने के बाद क्या मिलता है, कैसा मिलता है? ठीक है, सिद्धांत की दृष्टि से सब ठीक है, पर व्यवहार की दृष्टि से गीता भी कहती है, हमारे अन्य उपनिषद भी कहते हैं यहीं पर, यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदित महति विनष्टि। इसी जीवन में सत्य को जान लो तब तो महान लाभ है, और नहीं जाना तो महान विनाश है। तो यहां पर भी अत ऊर्ध्वम का मतलब यह नहीं कि मरने के बाद, इसका तात्पर्य यही है, तुरंत मन और बुद्धि को हम भगवान में रखने में समर्थ हुए, हम पूरी तरह भगवान में चले गए। मन को केवल दिया तो पूरी तरह नहीं गए, और मन और बुद्धि को दे दिया तो हम पूरी तरह से भगवान में निविष्ट हो गए, यह यहां पर कहा गया है। अब भगवान समझते हैं अर्जुन की कठिनाई को, साधक की कठिनाई को। वे जानते हैं कि जितना कहना सहज उतना करना तो सहज नहीं है, करना तो बहुत कठिन है। तो इसीलिए कहते हैं अथ चित्तम समाधातु न शक्नोसि मैं स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। कहा कि देख, अगर तू अपने चित्त को इस प्रकार से मुझ में समाहित तो करने में समर्थ तू नहीं है तो क्या कर, अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की इच्छा कर। माने अभ्यास योग कर। या अभ्यास योग क्या है कि ठीक है, सबसे ऊंची अवस्था मन और बुद्धि को निविष्ट करना, पर वह संभव नहीं। इसीलिए कहा कि ठीक है, अगर वह संभव न हो तो अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे पाने की चेष्टा करो। अभ्यास योग एक शब्द आया है, अभ्यास भी और अभ्यास योग। कर्म और कर्म योग में जो अंतर है वही अभ्यास और अभ्यास योग में अंतर है। कर्म और कर्म योग कब, जब कर्म के माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं तो वह कर्म योग है, और सामान्य रूप से जो क्रिया करते हैं वह कर्म है। उसी प्रकार जिस अभ्यास से हम ईश्वर से जुड़ते हैं वह अभ्यास योग है, और बाकी जो हम करते हैं वह मात्र अभ्यास है। अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की चेष्टा कर। अभ्यास योग मैंने अभी बताया आपके पास कि मन को बार बार यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद्। यह जो गीता में कहा है, जहां जहां मन जाता है वहां से मन को लाओ और लाकर के भगवान में उसको स्थापित करो, फिर मन भागेगा, फिर लाकर के स्थापित करो। जो हमने एक केंद्रीय विचार बना लिया है उस केंद्रीय विचार से मन भागेगा, पुनः उस मन को लाओ रखो, फिर भागेगा पुनः उसे लाओ, फिर भागेगा पुनः उसे लाओ। यह बहुत उबाऊ प्रक्रिया है, यह बहुत बोरिंग है। इस पर है साधना, यही बोरिंग है जरूर कि मन बार बार भागता है, पुनः पुनः लाना पड़ता है, तो इसमें कई लोग थक जाते हैं। तो जिसको हम कहेंगे कि पहले ही जो आउट हो जाते हैं यह बोरिंग के कारण, उबाऊ प्रक्रिया के द्वारा, कहते हैं बाबा मन इतना भागता है, कब कब कितना लाएं भाई, एक दो बार हो तो बात ठीक भी हो, ये तो क्षण भर में फिर भागे और फिर ला करके रखो, फिर भागे फिर ला करके रखो, यह अपने से जमता नहीं है। तो यह कहा कि अभ्यास योग उनके द्वारा जमता नहीं है। तो यहां पर यह कहा कि अभ्यास योग का मतलब क्या है, बारंबार ला करके चित्त को भगवान में रखना, बारंबार मन भागेगा, बारंबार पकड़ करके लाओ। यह जो है, मानो हम मन के दो भाग बना लेते हैं, एक भाग वह है जो मन की निगरानी करता है दूसरे मन की, और यह कहता है, हमने कहा जो निगरानी करने वाला भाग है, देख रे इस मन को देखना, तो कहीं भागे नहीं, भगवान के चरणों में ही रहे। और आप देखते हैं कि वह भागने वाला ऐसा भागता है कि चौकीदार को भी ले जाता है, दोनों के दोनों गए पता ही नहीं, बाजार में घूम रहे हैं बढ़िया, और अचानक ख्याल आए, अरे मैं तो भगवान के लिए प्रार्थना के लिए बैठा, ये चौकीदार भी भाग गया। और जो ही पकड़ में आया, मन का स्वभाव ही ऐसा है, आप देखेंगे जहां आपने मन को पकड़ा कि मन कूद करके आ जाता है अपने स्थान पर, यह मन की विशिष्टता है। मन को आपने पकड़ा कि मन आकर के अपनी जगह खड़ा हो गया, आया और फिर हमने रखा, फिर थोड़ी देर बाद वह चला गया चौकीदार को साथ में लेकर के, तो फिर से लाना, यह जो है ना बहुत उबाऊ है। पर हम अगर बारंबार करते रहे, अभ्यास योग करते रहे, तो क्या होगा, दो प्रकार से लाभ होगा। जैसे मान लीजिए अभी भागे हुए मन को मैं ला करके टिकाता हूं और फिर मन भागता है, तो यहां पर अगर अभी दो मिनट बैठता है तो अभ्यास करने से वह ढाई मिनट बैठेगा, फिर तीन मिनट बैठेगा, इसी प्रकार बैठने की जो अवधि है वह बढ़ती जाएगी। अच्छा अब यहां से मन भाग गया, अब भाग गया तो मैं तो बाजार में घूम रहा हूं, भगवान को भूल गया, और बाद में फिर ख्याल आता है, तो अभी जो मैं दो मिनट तक भगवान को भूले रहता हूं और मन बाजार का चक्कर मारता रहता है, तो अभ्यास के द्वारा में वह अवधि कम होती जाएगी। अब मैं डेढ़ मिनट में ही मन को पकड़ लेता हूं, फिर अभ्यास करने से एक मिनट में ही मन को पकड़ लेता हूं, और ऐसा अभ्यास होता है कि बस आधा मिनट भागा है कि पकड़ लेता हूं, और ऐसा भी अभ्यास होता है कि मन में बाहर जाने की प्रवृत्ति आई कि मैं पकड़ लेता हूं, मन बाहर नहीं जा पाता है। यह अभ्यास योग का तात्पर्य, वह अवधि घटती है जिसको मैं पकड़ता हूं, और वह अवधि बढ़ती है जिसमें मन भगवान में बैठता है। ये दोनों क्रियाएं साथ संपन्न होती हैं। तो यह अभ्यास योग का मतलब है। अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। फिर ऐसा लगा भगवान को कि भाई अभ्यास योग भी तो बहुत उबाऊ है, बहुत कठिन है, शायद इसमें भी अगर समर्थ न हो तो भगवान मानो और सहज करते हैं। अभ्यासे अपि असमर्थोसि, अगर अभ्यास में भी तो असमर्थ है, मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मत कर्म परमो भव, मेरे कर्म परायण हो, मानो वही कि जो कुछ भी करोगे उसको मानो तुम मुझसे संबंधित होकर के करो। यह भगवान का मतलब कि ठीक है कि अब अभ्यास योग तुम नहीं कर पा रहे हो, उसमें अपने को असमर्थ मानते हो, तो मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे लिए कर्म करते हुए तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। इसका मतलब क्या, व्यापार करता हूं क्या भगवान के लिए हो सकता है? अवश्य हो सकता है। या जो मैं खेत में हल चलाता हूं वह भगवान के लिए हो सकता है? अवश्य हो सकता है। शिक्षा में देता हूं वह क्या भगवान के लिए हो सकता है? हो सकता है। व्यापार वाणिज्य करता हूं भगवान के लिए हो सकता है? सब हो सकता है, भगवान के लिए हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप एक मुनीम को देखिए, वह अपने साहूकार के लिए, सेठ के लिए कर्म करता है। वह जब भी कर्म करेगा, करोड़ों का व्यापार करता है मुनीम, पर किसके लिए करता है? क्या अपने लिए? बोध किसका है? सेठ का काम कर रहा हूं, यह सेठ का काम है, साहूकार का काम है, मैं तो एकमात्र एक मुनीम हूं। परंतु वह सब काम करता है, पर हर समय सेठ का भान उसके भीतर में मौजूद है। वह अपने को इन समस्त करोड़ों रुपए के व्यापार का कर्ता नहीं मानता है। यह तो आप सामान्य देखते हैं, दुनिया में मुनीम कितना भी व्यापार करे, कितने करोड़ों का व्यापार करे, पर उसे यह मालूम है कि यह व्यापार मेरे लिए नहीं है। करोड़ों का व्यापार करने पर भी इस एक रुपए में मैं हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि यह सेठ का है, यह साहूकार का है। ठीक, यदि यही भाव हम भगवान के प्रति बना सके, सब कुछ हम कर रहे हैं प्रभु तुम्हारे लिए, यह तुम्हारा ही काम, यह तुम्हारी ही मर्जी से, तुम्हारी ही इच्छा शक्ति से, अगर हम प्रभु को वहां पर इस प्रकार से ला करके रख सकें जैसे मुनीम सेठ को अपने भीतर रखता है, वैसे ही यदि हम भी प्रभु को अपने कर्मों के बीच रख सकें, तो वही है प्रभु के लिए कर्म करना। मदर्थम कर्मा, यह जहां कहा गया मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तो सिद्धि को प्राप्त होगा। भाव भगवान का बना हुआ है, मैं चाहे जो भी कर्म करूं उसमें भगवान का भाव बना हुआ है, और भगवान का भाव बनने से एक लाभ यह होगा कि हम विकर्म नहीं कर पाएंगे। माने यह जो कर्म अकर्म और विकर्म, तीन कर्म के रूप बताए हैं, कर्म माने कर्तव्य कर्म, विकर्म माने विपरीत कर्म, शास्त्र निंदित कर्म जिसको हम कहेंगे अशुभ कर्म, अकर्म माने चेष्टा का अभाव, आलस्य जो हमारे भीतर में आता है, जड़ता आती है, प्रमाद आता है, यह अकर्म है। तो अगर प्रभु के लिए है तो स्वाभाविक ही प्रभु के साथ योग रहने से न तो हम जाएंगे विकर्म की ओर, अकर्म का तो त्याग करेंगे ही। जैसे मुनीम है, मुनीम क्या करता है, उसके भीतर में उद्योग है, वह आलस्य नहीं करता, वह जितना इतना कर्म कर रहा है उसके पीछे उसका जो केंद्र है सेठ है, साहूकार है। ठीक इसी प्रकार हम जो भी कर्म करें उसका केंद्र भगवान को बना लें तो एक लाभ और होगा, विकर्म की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, हम आकर्षित नहीं होंगे, प्रभु जहां पर हैं वहां पर हमारे जीवन में विपरीत कर्म नहीं आएंगे। हम ईश्वर का ध्यान करते हुए कभी अशुभ कर्म नहीं कर सकते। अशुभ कर्म कब करते हैं? जब ईश्वर का ध्यान नहीं होता है तब हम अशुभ कर्म करते हैं, पर अगर ईश्वर का ध्यान बना है अशुभ कर्म हमारे जीवन में नहीं आता है। तो इसलिए यहां कहा कि तू क्या कर कि मेरे लिए कर्म करने वाला बन। अच्छा, अब मेरे लिए कर्म करने वाला बन यह भी संभव न हो तो, अगर सभी समय ईश्वर को केंद्र बनाकर के कर्म न कर सकूं तो, ऐसी मुझ में पात्रता न हो तो कि इन समस्त विभिन्न कर्मों के बीच में प्रभु तुम्हारा स्मरण न कर सकूं तो, ठीक है न कर सको तो अथवि अशक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मान। बहुत साइकोलॉजिकल है, मैंने कहा गया यहाँ पे अगर तू मेरे आश्रित होकर के मुझे केंद्र बना करके कर्म नहीं कर सकता है, उसमें असमर्थ है, तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मान, फिर सर्व कर्मों के फल का त्याग तू मेरे पास कर दे, माने त्याग मुझे कर दे, माने त्याग इन कर्मों के फल का त्याग मेरे लिए कर दे, पर मुझे दे दे, इन कर्मों का फल मुझे दे दे। ततः गुरु यतात्मवान, तू प्रयत्न करने वाला है, तू योग में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो तू क्या कर, सभी कर्मों के फल का त्याग मेरे प्रति कर दे। अब सर्व कर्मों के फल का त्याग इतना क्या सरल है कि ठीक है कि भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म तू नहीं कर पाता है, हर समय मेरा स्मरण नहीं हो पाता है, इतना तो कर दे, कर्म तो कर, ठीक है, कर्म में कर्तापन का त्याग नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यह है, जब भगवान ने कहा कि मेरे लिए कर्म करने वाला मन, इसका मतलब कि कर्म के पीछे जो कर्तापन है अपने ऊपर मत लाद, तू मुझे दे दे, यह भाव। अच्छा ठीक है कि कर्म का कर्तापन तू छोड़ नहीं पा रहा है, तो उस कर्म के फल का भोक्तापन तो छोड़ दे, तो भोक्तापन मुझे दे दे। माने यह साधना कोई सरल नहीं है, पर यह भिन्न भिन्न प्रकार की साधना है, अलग अलग जैसे स्वभाव वाले होते हैं उनके लिए साधना है। कि इसको हम ऐसा माने कि एक व्यक्ति होता है जो मन और बुद्धि को भगवान में निविष्ट करने में समर्थ होता है, ठीक है, वह उसकी रुचि है, प्रवृत्ति है। अब एक व्यक्ति है उसकी रुचि उसमें नहीं है, उतनी श्रद्धा नहीं है, वह अभ्यास योग करता है, ठीक है, अभ्यास योग करता है तो उसके द्वारा भगवान को पा सकता है। तीसरा व्यक्ति है जो अभ्यास योग में भी जिसकी रुचि नहीं है, वह भगवान को ही सभी कर्मों का केंद्र देखता है, कर्तापन उनको सौंप सकता है, तो वैसा कर दे। चौथा व्यक्ति है जो कर्तापन तो नहीं सौंप पाता, पर कर्मों का फल भगवान को सौंप सकता है, अपने को मानता है कर्ता पर फल अपने लिए नहीं लेता, कहता है प्रभु यह जो है कर्मों का फल वह सब तुम्हें समर्पित है। मानो ये भिन्न भिन्न प्रकार के भाव हैं, कोई भी भाव। जैसे मैं जब साधना करता था, वहां पर था वशिष्ठ गुफा में पुरुषोत्तमानंद जी के पास, पहले ध्यान जैसे करता था तो कहीं पर जाकर के मन अटकता था, वह अटकाव दूर नहीं होता था, बहुत से लोगों के पास मैं गया पर वह अटकाव दूर नहीं हुआ। फिर स्वामी रंगनाथानंद जी से तब भेंट हुई, देहरादून वे गए थे, मैं वहीं था उस समय। उन्होंने कहा कि तुम इधर उधर क्यों जाते हो, तुम जाओ वशिष्ठ गुफा पुरुषोत्तमानंद जी के पास चले जाओ, तुमको योग में रुचि है तो ठीक है। मैंने पुरुषोत्तमानंद जी का नाम उनके मुख से पहली बार सुना, ऋषिकेश आया, मैं वहां था कुटिया में, वहां गोपेश महाराज थे, अभी भी हैं गोपेश महाराज, बड़े वृद्ध हैं, लगभग 94 साल की उम्र है, माँ शारदा के सेवक और उनके शिष्य रहे हैं, अद्भुत हैं, विलक्षण पुरुष हैं, मानो चल नहीं पाते हैं कुछ नहीं, पर मन इतना सचेत, इतना जागरूक और इतने समर्पित, अद्भुत हैं, महापुरुष हैं। अभी वृंदावन के आश्रम में रहते हैं, तो गोपेश महाराज उस समय ऋषिकेश में थे, तो अचानक उनसे बातचीत कर रहा था, ध्यान की अपनी कठिनाई बता रहा था। वैसे मैं बहुत स्थानों में गया, बड़े बड़े नामधारी संतों के पास गया, अपनी कठिनाई रखी, उन्होंने जो उत्तर दिया उत्तर मुझे मालूम था सैद्धांतिक दृष्टि से, परंतु व्यावहारिक कठिनाई मेरी दूर नहीं हो रही थी। तो गोपेश महाराज ने भी कहा कि तुम जाओ पुरुषोत्तमानंद जी के पास। अब ये दो महापुरुषों से, रंगनाथानंद जी से भी नाम मिला, गोपेश महाराज से भी नाम मिला, उन्होंने ही मुझे बस में चढ़ा दिया और बस वाले से कहा कि ब्रह्मचारी जी को उतार देना वशिष्ठ गुफा में, ठीक है। मैं गया वहां पर, तो पुरुषोत्तमानंद जी से जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा अच्छा तुम इस ढंग से जरा ध्यान करो, तो किया कुछ दिन, लाभ नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरी प्रणाली बताई, इस ढंग से करो तो लाभ नहीं हुआ। पांचवी जब प्रणाली उन्होंने बताई, चार प्रणालियों का कोई असर मुझ पर नहीं हुआ, एक पांचवी प्रणाली बनाई, अच्छा इस ढंग से जरा ध्यान करके देखो, तो मैंने किया और अटकाव दूर हो गया। मैंने कहा महाराज इसमें तो मुझे लाभ हुआ है। तो मैं यह बता रहा था, अब ये जो चार प्रणालियां उन्होंने आगे बताई ये गलत नहीं है, ये अलग अलग प्रकृति के साधक के लिए ये प्रणालियां हैं। एक जो प्रणाली है किसी एक साधक को लग जाती है, दूसरी प्रणाली दूसरी साधक को लग जाती है। तो यहां पर जो प्रणालियां बताई गई हैं ये चार, ये भिन्न भिन्न प्रकृति वाले साधकों के लिए, कोई होता है मन बुद्धि को प्रभु में निविष्ट कर दे सकता है, दूसरा होता है जो अभ्यास योग करने में समर्थ है, तीसरा है जो भगवान को केंद्र बना करके कर्म कर सकता है, कर्तापन का त्याग कर सकता है, चौथा है भगवान कहते हैं कि अगर तू इसमें समर्थ नहीं है, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, तो कर्मों का फल त्याग कर दे, माने तू भोक्तापन का त्याग कर दे। कर्तापन नहीं छोड़ सकता तो मत छोड़, भोक्तापन छोड़ दे कि कर्म हम करें पर कहें कि प्रभु ये मेरा नहीं, यह प्रभु तुम्हारा है। यह जैसा हम करते हैं कर्तापन, हमने कर्म तो किया, कर्तापन का भाव मैंने यह किया, यह सेवा कार्य किया, परंतु उसके बाद प्रभु इसका फल समाज को, इसका फल तुम्हें, मैं इसका फल अपने लिए नहीं चाहता हूं। यह कर्म फल का त्याग है जो यहां पर भगवान कहते हैं कि ऐसा तू कर। यहां तक कहा, अब इसके बाद एक परिपाटी यहां पर बदल दी, उसको हम कल देखेंगे कि यहां पर अभी तक क्या कहा कि भक्ति का पथ हमारे समक्ष प्रशस्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके। उन्होंने पहले तो कह दिया कि भाई तू अपना मन और बुद्धि मुझको दे दे, मुझ में निविष्ट कर दे, यह संभव नहीं समझता तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की कोशिश कर। अच्छा यह भी तेरे लिए रुचिकर न हो या तेरे लिए इस प्रकार से संभव न दिखता हो तो ऐसा कर कि कर्म का कर्तापन मुझे दे दे, अपना कर्तापन तू मत रख, यही मान कि कर्मों के केंद्र में मैं ही हूं। यह संभव नहीं दिखता तो ठीक है तो फलों का भोक्तापन दे दे मुझे, कर्म तू भले कर पर भोक्तापन अपने पास मत रख, यह सर्व कर्म फल त्याग तू कर दे। अब यह कहा फल त्याग कर दे, कोई सोचेगा कि बाबा यह फल त्याग क्या सबसे निम्न साधना है, किसी से कहा जाए कि अच्छा कर्म फल त्याग करो तो ये तो चौथी साधना है, मैं क्यों पहली साधना क्यों नहीं करूं। मन में ऐसा उठता है कि भाई मैं पहली शनि की साधना करूं, स्वाभाविक ही होता है। कई लोग जैसे आते हैं उनसे कहा जाए, पूछते हैं रास्ता पूछते हैं, और हम अगर कहें कि देखिए कठिन साधना है, कोई कठिन नहीं महाराज पर शॉर्टकट तो वही है ना, तो वही मैं करूंगा। अरे कैसे करेगा भाई, पात्रता नहीं है, शॉर्टकट करके क्या गिरेगा, अपनी टांगे तोड़ेगा। जैसे हम जा रहे थे वहां पर दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी, अब हमारे साथ एक युवक थे, अब युवक थे तो वहां पर आपने देखा होगा एक तो लंबा रास्ता है और दूसरा रास्ता है जो ऐसे पहाड़ में से सीधे चला जाता है, तो ऐसे ही जो पैरापेट बना है तो उसी पर से चलते हुए जाने लगा। हमें बड़ा लोभ आया, भाई ये तो बड़ा शॉर्टकट है और जल्दी ये पहुंच जाएगा, तो हम भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। उसने कितना कहा कि महाराज आप उस रास्ते से आइए, लंबे रास्ते से, भले ही वह लंबा रास्ता 14 किलोमीटर का है और यह जो शॉर्टकट है यह करीब 8 किलोमीटर का है। कहा कि आपके बस की बात नहीं है। कहा क्यों नहीं, तुम जा रहे हो हम भी जाएंगे, ठीक है आइए। और मैं 5 मिनट चला नहीं हूंगा कि बस धौंकनी तो बस हो गई, मुझे बैठना पड़ा। अब क्या करूंगा, अगर मैं जबरदस्ती चलूंगा तो फिर तो हो गया, मैं चल ही नहीं सकता, मैं तो बस सांस फूल जाएगी, दम फूल जाएगा, मैं चल ही नहीं पाया, अंत में मुझे उस लंबे रास्ते से आना पड़ा। तो मतलब क्या हुआ कि रास्ता भले शॉर्ट हो, नजदीक का दिखाई देता हो, पर मैं उसका पात्र हूं क्या, मेरी पात्रता उस रास्ते की है क्या, मैं उसके लायक हूं क्या, यही प्रश्न है। हम वह पात्रता भूल जाते हैं साधना के क्षेत्र में, कहते हैं भाई बस मुझे तो वही रास्ता बताइए शॉर्टकट का। अरे कहां से शॉर्टकट का, है नहीं तैयारी। तो इसका मतलब यहां पर यूं है कि कर्म फल त्याग कोई चौथा और सबसे नीचे का रास्ता नहीं है, यह वे बताना चाहते भगवान कृष्ण। अर्जुन के मन में आए कि अरे भाई कर्म करो और फल का भोक्तापन दे दो, इसका मतलब युद्ध करो और युद्ध का भोक्तापन दे दो, ये युद्ध में लगा ही रहे हैं, माने सबसे ये जो निचली श्रेणी की साधना यही करा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है, अरे कर्म फल त्याग भी बहुत कठिन है अर्जुन, वह बहुत साधना से सधता है। तो यहां पर वही कहते हैं 12वें श्लोक में, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागा शांति अनंतरम। यहां पर क्या बता दिया, क्रम में विचित्र बता दिया, कहा कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेयस्कर है, ज्ञान से ध्यान बढ़ करके है, और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग बढ़ करके है, क्योंकि कर्म फल का त्याग हुआ कि मनुष्य के जीवन में शांति आ जाती है, उल्टा लगता है। यह उल्टा जो लगता है इसको कल सीधे ढंग से समझने की चेष्टा करेंगे, आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। हरिओम तत्सत।